नमस्ते, मैं आराफ हूँ। 9R3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, द डीप स्काई इमेजिंग प्राइमर थर्ड एडिशन, चार्ल्स ब्रैकन की डीप स्काई एस्ट्रोफोटोग्राफी पर केंद्रित व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। वर्ष 2022 में डीप स्काई पब्लिशिंग से प्रकाशित यह संशोधित और विस्तारित संस्करण आधुनिक कैमरों, सॉफ्टवेयर और इमेज प्रोसेसिंग की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है। पुस्तक का विषय चंद्रमा या ग्रहों की सामान्य फोटोग्राफी नहीं, बल्कि निहारिकाओं, आकाशगंगाओं और तारागुच्छों जैसे धुंधले डीप स्काई पिंडों की तस्वीर बनाना है। इसका उद्देश्य पाठक को केवल उपकरणों की सूची देना नहीं, बल्कि यह समझाना है कि कैमरा सेंसर प्रकाश को कैसे दर्ज करता है, लंबे एक्सपोजर क्यों आवश्यक हैं और कच्चे डेटा से उपयोगी अंतिम छवि कैसे बनाई जाती है। सामग्री को इमेज की बुनियादी समझ, इमेज अधिग्रहण और इमेज प्रोसेसिंग जैसे क्रमिक हिस्सों में रखा गया है। पूर्ण रंगीन चित्रों और अनेक उदाहरणों के माध्यम से पुस्तक तकनीकी अवधारणाओं को वास्तविक कार्यप्रवाह से जोड़ती है। पिक्सिनसाइट पर विशेष ध्यान इसे समकालीन डिजिटल प्रोसेसिंग सीखने वालों के लिए उपयोगी बनाता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, कैमरा सेंसर, गेन और डायनामिक रेंज की बुनियादी समझ। पुस्तक का एक केंद्रीय आधार यह है कि अच्छी डीप स्काई तस्वीर केवल महंगे टेलीस्कोप का परिणाम नहीं होती, बल्कि सेंसर में दर्ज होने वाले संकेत को समझने का परिणाम होती है। बहुत धुंधले खगोलीय पिंडों से आने वाला प्रकाश सीमित होता है, इसलिए कैमरा हर पिक्सल पर एकत्र फोटोनों को इलेक्ट्रॉनिक डेटा में बदलता है। इस प्रक्रिया में गेन, रीड नॉइज, बिट डेप्थ और डायनामिक रेंज जैसे विचार निर्णायक बनते हैं। ब्रैकन इन तत्वों को इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि इनके बिना इमेजर एक्सपोजर की अवधि, कैमरा सेटिंग और लक्ष्य के बीच सही संतुलन नहीं बना सकता। गेन बढ़ाने से कमजोर संकेत को पढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन उपलब्ध डायनामिक रेंज घट सकती है और चमकीले तारों के भाग जल्दी संतृप्त हो सकते हैं। दूसरी ओर, बहुत कम गेन हर परिस्थिति में सर्वोत्तम नहीं होता, विशेषकर जब रीड नॉइज का प्रभाव महत्वपूर्ण हो। पुस्तक का व्यावहारिक संदेश यह है कि सेटिंग को किसी एक सार्वभौमिक नियम से नहीं, बल्कि आकाश की चमक, कैमरे की विशेषताओं, फिल्टर और लक्ष्य के अनुसार चुनना चाहिए। यह दृष्टि शुरुआती पाठक को कैमरा नियंत्रणों को रहस्यमय विकल्पों की जगह मापनीय समझौतों के रूप में देखने में सहायता देती है। दूसरा, इमेज अधिग्रहण में ट्रैकिंग, एक्सपोजर और प्रकाश प्रदूषण का संतुलन। डीप स्काई इमेजिंग में अधिग्रहण का अर्थ केवल कैमरे का शटर खोलना नहीं है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण आकाश लगातार चलता दिखाई देता है, जबकि कैमरे को लक्ष्य पर स्थिर रखना पड़ता है। इसलिए सटीक माउंट, ध्रुवीय संरेखण और ट्रैकिंग की गुणवत्ता लंबी एक्सपोजर वाली छवियों की बुनियाद है। यदि ट्रैकिंग में त्रुटि हो तो तारे बिंदु के बजाय खींची हुई रेखाओं जैसे दिख सकते हैं और बाद की प्रोसेसिंग उस खोए हुए विवरण को पूरी तरह वापस नहीं ला सकती। पुस्तक इस वास्तविकता को इमेजिंग योजना से जोड़ती है, जिसमें एक्सपोजर की लंबाई, अनेक सब एक्सपोजर लेना और आकाश की परिस्थितियों का आकलन शामिल है। अत्यधिक लंबे एक्सपोजर हमेशा लाभकारी नहीं होते, क्योंकि शहरों के प्रकाश प्रदूषण या आकाशीय चमक से पृष्ठभूमि जल्दी भर सकती है। इसके विपरीत, पर्याप्त संख्या में छोटे या मध्यम एक्सपोजर जोड़कर कुल संकेत बढ़ाया जा सकता है और खराब फ्रेम हटाए जा सकते हैं। इसीलिए पुस्तक का दृष्टिकोण उपकरण खरीदने से आगे जाकर अनुशासित डेटा संग्रह पर बल देता है। पाठक समझता है कि अंतिम छवि की गुणवत्ता का बड़ा भाग उसी रात तय हो जाता है जब फोकस, फ्रेमिंग, ट्रैकिंग और एक्सपोजर नियंत्रित किए जाते हैं। तीसरा, कैलिब्रेशन फ्रेम से कैमरे और ऑप्टिकल त्रुटियों को अलग करना। खगोलीय कैमरा डेटा में दिखाई देने वाला हर पैटर्न अंतरिक्ष से नहीं आता। सेंसर का तापीय शोर, इलेक्ट्रॉनिक रीडआउट की असमानता, धूल के कण और प्रकाश पथ की किनारी मंदता अंतिम तस्वीर में अवांछित संरचनाएं बना सकते हैं। डीप स्काई इमेजिंग प्राइमर कैलिब्रेशन को इसी कारण मुख्य तकनीकी अनुशासन के रूप में रखता है। डार्क, फ्लैट और बायस जैसे सहायक फ्रेमों का उद्देश्य सुंदर तस्वीर बनाना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से अवांछित कैमरा और ऑप्टिकल संकेतों की पहचान कर उन्हें घटाना है। मसलन, फ्लैट फ्रेम असमान रोशनी और धूल के धब्बों के प्रभाव को ठीक करने में मदद करते हैं, जबकि डार्क फ्रेम तापीय तथा कुछ स्थिर सेंसर पैटर्न को मॉडल करने के काम आते हैं। इन फ्रेमों की उपयोगिता तभी अधिक होती है जब वे प्रकाश फ्रेमों की वास्तविक परिस्थितियों से मेल खाते हों। इसलिए तापमान, एक्सपोजर और ऑप्टिकल विन्यास का ध्यान रखना जरूरी है। पुस्तक इस चरण को वैकल्पिक सजावट की तरह नहीं प्रस्तुत करती, क्योंकि गलत या अनुपस्थित कैलिब्रेशन बाद में आक्रामक प्रोसेसिंग को प्रेरित कर सकता है। उसका परिणाम कृत्रिम रंग, असमान पृष्ठभूमि या वास्तविक धुंधली संरचना का नुकसान हो सकता है। इस विषय से पाठक सीखता है कि साफ अंतिम इमेज का आरंभ सही सुधार डेटा से होता है। चौथा, स्टैकिंग से कमजोर खगोलीय संकेत को शोर से उभारना। एक अकेले एक्सपोजर में निहारिका की सूक्ष्म संरचना अक्सर सेंसर शोर, आकाश की चमक और अन्य अनियमित प्रभावों में दब जाती है। पुस्तक अनेक सब एक्सपोजर को संरेखित कर जोड़ में यानी स्टैकिंग को डीप स्काई इमेजिंग की मूल प्रक्रिया के रूप में समझाती है। जब एक ही लक्ष्य के बहुत से फ्रेम मिलाए जाते हैं तो लक्ष्य का स्थिर खगोलीय संकेत मजबूत होता है, जबकि अनियमित शोर का सापेक्ष प्रभाव घटता है। किंतु यह केवल फाइलों को जोड़ देने का काम नहीं है, फ्रेमों का सही पंजीकरण आवश्यक है ताकि तारे और लक्ष्य की संरचनाएं एक दूसरे पर ठीक बैठे। साथ ही हवा, बादल, कंपन, उपग्रह रेखा या ट्रैकिंग समस्या से प्रभावित फ्रेमों की गुणवत्ता जांचना जरूरी रहता है। पुस्तक औसत और मध्यिका जैसी संयोजन विधियों के पीछे का तर्क भी संबोधित करती है, क्योंकि अलग विधियां असामान्य पिक्सलों तथा क्षणिक दोषों को अलग ढंग से संभालती है। इस चर्चा का व्यापक लाभ यह है कि पाठक कुल इंटीग्रेशन समय के मूल्य को समझता है। बेहतर परिणाम प्रायः ही एक चमत्कारी एकल एक्सपोजर से नहीं बल्कि सावधानी से चुने और ठीक तरह संयोजित किए गए पर्याप्त डेटा से आते हैं। यह सिद्धांत उपकरण सीमाओं के भीतर भी व्यवस्थित सुधार का रास्ता दिखाता है। अंत में पिक्सिनसाइट आधारित प्रोसेसिंग में डेटा संरक्षण और नियंत्रित सौंदर्य। पुस्तक में इमेज प्रोसेसिंग को अंतिम सजावटी चरण नहीं बल्कि मापे गए डेटा की व्याख्या की प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। इसके स्टार्ट टू फिनिश उदाहरणों में पिक्सिनसाइट पर विशेष जोर है, जो डीप स्काई इमेजरों के बीच व्यापक रूप से प्रयुक्त प्रोसेसिंग परिवेश है। कैलिब्रेशन और स्टैकिंग के बाद इमेज प्रायः फीकी, कम कंट्रास्ट वाली और पहली नजर में साधारण लगती है। इसका कारण यह है कि उपयोगी जानकारी का अधिकांश भाग बहुत संकरे चमक स्तरों में छिपा होता है। स्ट्रेचिंग और हिस्टोग्राम समायोजन से इस जानकारी को दृश्य बनाया जाता है, लेकिन अत्यधिक समायोजन शोर, रंग असंतुलन और कृत्रिम किनारे पैदा कर सकता है। इसी तरह बैकग्राउंड सुधार, रंग संतुलन, शोर घटाना और स्थानीय कंट्रास्ट जैसे कार्यों का क्रम महत्वपूर्ण है। बहुत जल्दी या बहुत आक्रामक नॉइज रिडक्शन वास्तविक धुंधली संरचनाओं को मिटा सकता है। पुस्तक का उपयोगी योगदान यह है कि वह तकनीकी प्रक्रिया और सौंदर्यात्मक निर्णय के बीच संबंध स्पष्ट करती है। लक्ष्य चमकीली या अत्यधिक संतृप्त तस्वीर बनाना नहीं बल्कि साफ पृष्ठभूमि, नियंत्रित तारों, विश्वसनीय रंगों और लक्ष्य की वास्तविक संरचना के बीच संतुलन बनाना है। यह पाठक को दोहराने योग्य कार्यप्रवाह विकसित करने में मदद करता है। निष्कर्ष में द डीप स्काई इमेजिंग प्राइमर थर्ड एडिशन उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जो DSLR या समर्पित एस्ट्रोनॉमिकल कैमरे से निहारिका, आकाशगंगा और अन्य डीप स्काई लक्ष्यों की गंभीर फोटोग्राफी शुरू करना चाहते हैं। यह उन मध्यवर्ती इमेजरों के लिए भी उपयोगी है जिनके पास उपकरण तो है लेकिन जिनकी छवियों में शोर, असमान पृष्ठभूमि, खराब तारे या कमजोर रंग जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह इमेजिंग को अलग अलग उपकरणों और सॉफ्टवेयर आदेशों की सूची नहीं मानती। इसके बजाय यह सेंसर भौतिकी, अधिग्रहण, कैलिब्रेशन, स्टैकिंग और प्रोसेसिंग को एक ही निरंतर कार्यप्रवाह के हिस्सों के रूप में रखती है। इससे पाठक यह समझ सकता है कि किसी त्रुटि को किस चरण में ठीक करना सबसे प्रभावी होगा। समान विषय की कई पुस्तकें टेलीस्कोप चयन या आकर्षक अंतिम छवि पर अधिक केंद्रित रहती है। ब्रैकन की पुस्तक की अलग पहचान आधुनिक डिजिटल कैमरों और प्रोसेसिंग के साथ बुनियादी सिद्धांतों को जोड़ने में है। पूर्ण रंगीन चित्र, पर्याप्त विस्तार और पिक्सिनसाइट केंद्रित उदाहरण इसके तकनीकी उपयोग को बढ़ाते हैं। फिर भी यह कोई उपकरण विशिष्ट त्वरित निर्देशिका नहीं है, इसलिए पाठक को अपनी प्रणाली पर सिद्धांत लागू करने के लिए धैर्य रखना होगा। यही इसकी स्थायी उपयोगिता भी है। यह बेहतर तस्वीर के साथ साथ डेटा की गुणवत्ता, सीमाओं और सुधार की प्रक्रिया पर अधिक अनुशासित दृष्टि विकसित करती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं चार्ल्स ब्रैकन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।